Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Asura Shabd ka Bhagavan Shankaracharya vyakhyan karte hain. Asushu रमन्ते इति आसुरः, असुषु का अर्थ करते प्राणयुषु इंद्रियेषु। असु शब्द का होता है प्राण, प्राण में इंद्रियों के जो पोषण में लगे रहते हैं, जैसे आंख है, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द सुनना, पैर का विषय है गमनागमन, जीव का विषय है खाना पीना। तो जो प्राणी हमेशा इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं उनका नाम है आसुर। और राक्षस शब्द का व्याख्यान किया कि खाद पीद पीब छिंदी बिंदी, इसमें जो लगे रहे उसका नाम राक्षस है, छिंदी बिंदी। मतलब कि जो हमेशा मार काट में साम्राज्य के बढ़ाने में लगे रहते हैं उनका नाम है राक्षस। आप साम्राज्यवादी को भी राक्षस कह सकते हैं भगवान शंकराचार्य के शब्दों में। और देवता वे हैं जो कि दमनशील है, अपने इंद्रियों को मन को वश में करके अपने स्वरूप का चिंतन करते हो उनका नाम है देवता। तो चाहे कोई आसुर प्रकृति का हो, चाहे राक्षस मल्लय की छिंदी बिंदी स्वभाव का हो, चाहे देव स्वभाव का हो, जब हलाहल निकला तो सबने भगवान शंकर को पुकारा। ऐसे ही हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी प्रकृति के स्वभाव के हो, जब अविद्या रूपी हलाहल से आप परेशान होना, इधर उधर नहीं जाना, सीधे कैलाश, और वह कैलाश आपके बंबई में प्रेम पूरी ही है, क्योंकि हिमालय की तराई में, हिमालय की गोद में ऋषिकेश है, ऋषिकेश आगे बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी पहाड़, वहीं शुरू हो जाता है कैलाश आश्रम है। उसकी दिव्य घटना है, कुछ लोगों को पता भी होगा, लगभग 150 वर्ष पहले वहां का जो संस्थापक आदि महाराज जिनका नाम था धनराज गिरी जी उस समय वहां सन्यासियों को ब्रह्मचारियों को पढ़ते पढ़ाते थे। रात को कई बार सपने हुए कि मैं गंगा के प्रवाह से बहने जा रहा हूं, इसीलिए तुम जो है उठाकर अपने आश्रम में प्रतिष्ठित कर दो। 2-3 बार सपना हुआ, जगने के बाद उन्होंने कहा कि ये सपना हो रहा है, इस सपना का रहस्य क्या, सो गए पूरा। जब ब्रह्म मुहूर्त में सपना हुआ तो सपने में उन्होंने प्रश्न किया कि मैं विरक्त सन्यासी ठहरा, आप यदि मैंने प्रतिष्ठित कर दिया आश्रम में तो आपकी पूजा नैवेद्य ये सब इसकी सेवा कौन करेगा, मैं तो विरक्त ठहरा, इसके लिए नित्य पुजारी रखना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, फिर धन धान्य की व्यवस्था करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने सपने में कहा कि तू केवल मुझे वेदांत का श्रवण कराना और सारी व्यवस्था मैं स्वयं संभाल लूंगा। इस सपने की घटना है, उस जमाने में इतने साधन नहीं थे, केवल जो है ना 2 तांगा चलता था कहते हैं, वो भी समय से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए 2 तांगे चलते थे, अब तो 24 गाड़ियां चल रही हैं हर 5-1 मिनट में। तो धनराज गिरि जी महाराज जैसा सपना हुआ था उसी सपने के आधार पर 8-10 महात्माओं को लेकर पैदल ही ऋषिकेश से हरिद्वार चल पड़े, जो लगभग 22 किलोमीटर है। जब चल करके आए तो उस सेठ भारामल की बगीची है कनखल में, जहां पर श्रादना सदन आश्रम है, तो कनखल में भारामल की बगीची में जब पहुंचे तो जैसा सपने में नजारा था वही उनको दिखाई पड़ा। गंगा जी के प्रवाह से मंदिर ढह चुका है और शिवलिंग भी बहने वाला है। अपना स्वस्ति वाचन करते हुए महादेव को कंधे पर उठा करके ऋषिकेश ले आए और प्रतिष्ठित कर दिया। तब से आज तक ऋषिकेश कैलाश आश्रम में हमेशा वेदांत का अध्ययन अध्यापन चलता रहता है और उसी पांचवी कड़ी में प्रेमपुरी जी महाराज हुए, जिन्होंने सोचा कि इसी ज्ञान गंगा को प्रेमपुरी में भी बसाना है, तो उसी ज्ञान गंगा को इस प्रेमपुरी आश्रम को उन्होंने स्थापित किया, जहां पर अनवरत अक्षुण रूप से हमेशा स्वाध्याय प्रवचन का प्रवाह चलता आ रहा है। तो जब भी आपको अपने काम धंधे व्यवसाय में कोई पीड़ा हो, हलाहल मतलब की दुख, उस समय यदि आप स्वाध्याय सत्संग का अवलंबन लेंगे, क्योंकि तो महादेव की प्रतिज्ञा है कि केवल मुझे तुम वेदांत का श्रवण कराओ और सारी जिम्मेदारी ही हमारी है। यदि हम श्रवण करेंगे तो निश्चित ही महादेव हमारे जीवन के, जैसे कि देवताओं के असुरों के हलाहल की समस्या को भगवान ने हल कर दिया, समाधान कर दिया। इसके बाद जब कामना होगी तो कामना को ही भगवान अपने तीसरे नेत्र से दग्ध कर देते हैं। कामना का नाश दो तरह से होता है, या तो कोई कामना न हो या हमारी कामना परिपूर्ण हो जाए, दो ही उपाय। सबसे अच्छी उपाय कोई कामना हो ही ना, और यदि कोई कामना हो गया तो कामना को पूरा करना हो तो श्रुति के अनुसार आपको आत्म काम होना चाहिए। जब आत्म काम होंगे तो आप्त काम, आप मतलब परिपूर्ण, सारी कामना अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। पर जीवन में हमें यदि कोई ऐसे हलाहल विष का दुख का सामना हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले आत्मा की कामना करें, शिव की कामना करें। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आगे भगवान की जिम्मेदारी है, जो भुवन भय भंगव्य शनिना, कि आपके भय को दूर करना, कामना को दग्ध करना। इसके बाद ज्ञान गंगा का अवतरण होना। पर इसमें एक ही बात आपको सावधानी बरतनी है कि नहीं बसीशु पथ्य परिभव, किसी का तिरस्कार न होना पाए, न होने पाए। क्योंकि श्रुति कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, ये पूरा प्रपंच ब्रह्ममय है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। किसी का तिरस्कार होता है तो उसके अंतःकरण से श्राप मिलता है। एक वागीश नाम के बड़े भारी शिव भक्त हो चुके हैं, उनका पुराना नाम था ज्ञान भृत। अज्ञान भृत भगवान शंकर की नित्य पूजा करते, बड़े भारी अच्छे विद्वान थे, वेदांती भी थे। परंतु एक दिन किसी सन्यासी के पास गए, बेचारे सन्यासी महात्मा पढ़े लिखे बहुत कम थे, भजनानंदी थे। उनसे उन्होंने मजाक में कहा कि आप क्या ये कंकड़ पत्थर की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये तो न बोलता है न चलता है, इसकी पूजा करने से क्या फायदा, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर ही ब्रह्म है, सब कुछ शरीर ही है। हालांकि यह पूर्व पक्ष था, उन्होंने उस बाबा जी की परीक्षा के लिए ऐसा बोला था, उनके बोलने का ऐसा भाव नहीं था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ लिखकर विद्वान होकर के भी अज्ञानियों की तरह विनोद के लिए किसी से या परीक्षा के लिए बोलते हैं। ऐसी ही यहाँ पर अज्ञान भृत ने बाबा इसे मजाक किया कि कंकड़ पत्थर फेंको, इससे कुछ नहीं होता है, ये शरीर ही आत्मा है और मध्यम परिमाण आत्मा का स्वरूप है। ये चारवाक भी ऐसा ही मानता है, चारवाक की मान्यता है कि मध्यम परिमाण आत्मा है। मध्यम मतलब की जितना शरीर का आकार प्रकार है उतना ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। इसीलिए आप इस पूजा को, कंकड़ पत्थर की पूजा को छोड़ो। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला कि देखो भाई मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर हमारे गुरुजी ने बताया है मैं वैसा कहता हूँ करता हूँ, परंतु यदि तुम्हारे वाक्य में वेद प्रमाण हो तब तो मैं तुम्हारी बात मान लूं और कंकड़ पत्थर की पूजा छोड़ दूंगा। उसने कहा कि वेद में सब बकवास है, वेद अज्ञानियों के लिए है, ये पुराने जमाने की बात है, जमाना बदल गया, कंप्यूटर युग आ गया है। ऐसा कहना था कि महात्मा जी कुपित हो गए। बोले कि तू इतना बड़ा भारी विद्वान है, ब्राह्मण है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जैसा गुरुजी ने बता दिया वेद में कहा वैसा मैं केवल श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता हूँ, और तू कहता है कि वेद में सब बकवास है, कि पुराने जमाने के बाद एक कंप्यूटर युग आ गया। बहुत क्रोध आया, अक्रोध में कह दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, आज के सातवें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अब खाना पीना छोड़ दूंगा। इतना क्रोध आया कि महात्मा जी खाना पीना छोड़ दिए। बोले जब तक तू वेद निंदक नहीं मरेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, अनशन कर लिया। हालांकि वो ब्राह्मण चरणों में गिर गया, क्षमा याचना किया, बोले कि नहीं तूने हमारे भगवान की निंदा की है, तूने वेद की निंदा की है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। और सात दिन के पहले वो ब्राह्मण महात्मा के क्रोध से उसका मल्लर के मरण हो गया। मरने के बाद वही अज्ञान भरित दूसरे जन्म में पुनः वागीस नाम से ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर जन्मने के बाद महात्मा के श्राप से यहाँ पर भी वह नास्तिक बना, पूरा परिवार उसका आस्तिक, बहन नास्तिक, पिता नास्तिक, सब नास्तिक, परंतु ये वागीस बड़े भारी नास्तिक बने। इनकी बहन बड़ी आस्तिक थी, इसका नाम था तिलिकावती। तिलिकावती ने भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना किया कि हमारे कुल में कोई भी नास्तिक नहीं, पर ये हमारा भाई इतना बड़ा भारी विद्वान हो करके भी नास्तिक क्यों है। तो महादेव ने सपने में कहा कि तू चिंता छोड़, ये जन्मांतर में किसी सन्यासी महात्मा का तिरस्कार किया था, उसी के श्राप से उसकी मृत्यु हुई और इस जन्म में इसको नास्तिक पना मिला, परंतु कुछ काल के बाद पुनः यह आस्तिक बन जाएगा। तिलिकावती ने जो उसकी बहन है बहुत भगवान से प्रार्थना किया कि आप महादेव हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप कृपा करके इसे अपने चरणों का दास बना लीजिए। भगवान शंकर की प्रेरणा से उस वागीस के पेट में बड़ा भयंकर पीड़ा हुई, परेशान वह नास्तिकों के पास गया, बोला कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, जैसे भी हो हमारे उदर शूल को आप लोग नष्ट कीजिए। बहुत दवा किया, टोना झाड़ फूक किया, सब कुछ किया, फिर भी उदर शूल नष्ट नहीं हुआ, उल्टे वह बढ़ते गया। अंत में सारे वैद्य और उसके जो झाड़ फूक करने वाले हैं सब इधर उधर भग गया, अकेले पड़ गया। सबने घोषित कर दिया कि अब तू नहीं बचेगा। उसके सेवा में एक दासी थी, उसको रात को अचानक अपने बहन का याद आया कि हमारी बहन भगवान शंकर की भक्ता है, शायद वह मुझे बचा ले। संदेश भिजवाया, संदेश लेकर वह दासी तिलिकावती के पास आती है। तिलिकावती ने कहा मुझे बहुत दुख है कि हमारे भाई मरणासन्न है, पर जाकर उसको कहना कि मैं तो आ नहीं सकती हूँ नास्तिक के बीच में, परंतु वह आ जाए तो मैं उसे बचा लूंगी। बस खबर सुनते ही तत्काल वह वागीस अपनी बहन के पास आता है और आकर चरणों में गिर पड़ता है, बोलता बहन तुम जैसे भी हो मुझे बचा लो। बहन ने कहा कि पहले तू गंगा, पहले इस नदी में जो नदी थी वहां स्नान करके आ। स्नान करके आया, उसके माथे पर भस्म लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनाया, इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का जप करने को बताया। जप करने वह बैठा, इधर तिलिकावती भगवान के मंदिर में जाकर आंख बंद कर अपने हृदय से प्रार्थना किया कि भगवान आप जैसे भी हो इसकी पीड़ा को दूर कीजिए, भगवान तिलकावकीति की प्रार्थना को स्वीकार करके तत्काल उसको भगवान ने एक भस्म दिया, भस्म को ले आकर के जल में घोलकर पिला दिया, पीते उसका उदर स्थूल दूर हो गया, परम आस्तिक बना। विद्वान तो पहले से था ही, अब वह सही मत का प्रचारक बन गया, परंतु जो उसके नास्तिक साथी थे उन्हें रहा नहीं गया, उन्होंने राजा के पास जाकर शिकायत कर दिया, यह जो वागीश है हम लोगों से तंत्र मंत्र सब कुछ सीख लिया है और झूठ मूठ का उदर शूल का बहाना करके ये पुनः सही मत का प्रचारक प्रचार कर रहा है। उस देश का राजा भी उस समय नास्तिक ही था। राजा ने वागीश को बुलाया और कहा, ये तुम बड़ा अधर्म कर रहे हो, ठीक नहीं है। वागीश ने कहा कि फिर शास्त्रार्थ हो, किसका मत सही है किसका मत गलत है इसके लिए शास्त्रार्थ होना चाहिए। राजा ने शास्त्रार्थ के लिए मना कर दिया। उन विधर्मियों ने कहा कि इसने सारे जादू मंत्र तंत्र हमसे सीख लिया है और सीख करके इसका दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए इसको मौत की सजा होनी चाहिए। चूंकि राजा भी नास्तिक था, राजा ने कहा कि हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म, इसको हम कैसे मार सकते हैं। बड़ी अच्छी युक्ति उन्होंने बतलाई, ऐसा करो एक कमरे में चूना भर दो और चूने कमरे में इसे डाल दो और गले तक चूना से इसको ढक दो, इसके बाद बाहर से तरा लगाकर पानी डाल देना, अपने आप खोलेगा तो मर भी जाएगा और हिंसा भी नहीं होगी, क्योंकि अहिंसा जो है आपका धर्म, हिंसा तो कर नहीं सकते, अपने आप मर जाएगा ये चूने में जो है। राजा ने ऐसा ही किया, एक कमरे में पहले वागीश को खड़ा किया, चारों तरफ से गले तक चूना भर दिया, बाहर से ताला बंद करके पानी जल डलवाया। 7 दिन तक वागीश भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बहुत ही आराम से पड़े रहे, जो ताला खुला तो बिल्कुल वैसे ही। नास्तिकों ने कहा कि राजा चिंता की बात नहीं, किसने एक मंत्र सीखा है उस मंत्र के बल से ये बच गया, अब आप ऐसा करो भोजन में पॉइजन मिला करके खिला दो इसको। वैसा ही किया जैसे मीरा को राणा ने किया था, खीर बनवाई, खीर में उसने विष डलवा दिया, विष दे करके कहा कि तुम इसको ग्रहण करो। वागीश भगवान शंकर का स्तवन किए कि आप तो हलाहल विष को भी हजम करने वाले हैं और आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप हमारे हृदय में भी हैं, तो आप इस विषाक्त खीर को स्वयं ही भोग लगा लीजिए। विषाक्त खीर के खाने पर भी वागीश का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जस की तस। फिर नास्तिकों ने कहा कि राजन ऐसा करो, इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दो, ये बड़ा महापात की है, ये कुल कलंक है, हमारे नास्तिक परंपरा में रह करके और सही प्रचार करने लगा है, ठीक नहीं है। एक मदोन्मत्त हाथी को बुलवाया, पिलवान उसको अंकुश मारा, वह दौड़ते दौड़ते वागीश के पास आया, जैसे ही आया वैसे ही सामने सुन उठाकर खड़ा हो गया, चारों तरफ परिक्रमा करके वापस चला गया। इसके बाद नास्तिकों ने कहा कि ऐसे नहीं मरेंगे, बड़ा मंत्रज्ञ है, अब इसको आप समुद्र में बहा दो सीधे, समुद्र में तो कोई इसको नहीं बचा सकता, तंत्र मंत्र भी काम नहीं करेगा, एक बड़े शिला में बांध करके इनको समुद्र में डाल दिया। इन्होंने उस शिला में नाव की भावना किया, वो शिला तैरने लग गई, राजा देखा कि आराम से तैरते हुए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना किया कि हमने नास्तिकों के कारण से बहुत दंड दिया और मैं देख रहा हूं आपका बाल बांका नहीं हो रहा। नास्तिकों ने कहा कि राजन यदि आप जो है इसके चमत्कार से प्रभावित होकर हमारा मत छोड़कर यदि आप वैदिक मत स्वीकार करते हैं तो इस देश में संग्राम हो जाएगा। राजा को पहले तो बहुत क्रोध आया, पर मंत्री ने समझाया कि आप क्रोध न करें, इसकी पहले बात सुने। नातिकों ने कहा कि आप शास्त्रार्थ करवाइए। शास्त्रार्थ में जिसका मत जो है हार जाए, जो अपने शास्त्रार्थ से हार जाए उसका मत जो है आप छोड़ दीजिए, जीते हुए ग्रहण कर लीजिए। 36,000 विद्वान जो नास्तिक पक्ष में थे, केवल 50 ब्राह्मण आस्तिक थे, वे भी डरते थे काफी। शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में वागीश ने पूरे उस नास्तिकों को के मत का खंडन कर दिया। खंडन करने के बाद वागीश ने कहा कि या तो ये देश छोड़ दें या ये वैदिक मत को स्वीकार करें। सभी नास्तिकों ने वैदिक मत स्वीकारा है और अंत में कुछ जो नास्तिक बचे हुए देश से चले गए। ये घटना आपके दक्षिण भारत की है, बहुत पुरानी नहीं है, लगभग जो है 800 वर्ष पुरानी घटना है। तो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करता है, तिरस्कार करने वाला कभी भी भगवान के कोप से बच नहीं सकता है। इसलिए यहां पर पुष्पदंताचार्य जी ने सावधान कर दिया कि नहीं बसीसु पथ्य परिभव। यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा चाहे कितना ही बड़ा कोई कामदेव से भी सशक्त क्यों न हो, वह भी जलकर राख हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं। प्रहलाद के साथ उसके पिताजी ने क्या क्या अत्याचार किया, भगवान को तत्काल अवतार लेना पड़ा, वो भी विलक्षण अवतार लेना पड़ा, नरसिंहाकार। तो भगवान कब कहां कैसे किस रूप में आएंगे ये जो है मनुष्य सोच नहीं सकता है। भगवान शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत किया है, अचिंत्या ये खलु भावा तांस्तु तर्केश नैव योजयेत, प्रकृति व्यश्च परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षण। किसी ने पूछा कि भगवान अचिंत शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, अचिंत मतलब कि मन वाणी से हम चिंतन नहीं कर सकते, तो अचिंत हम किसे कहते हैं। तो आचार्य ने कहा कि प्रकृति के नियम से जो ऊपर है उसका नाम है अचिंत्य। जैसे प्रकृति का नियम है कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है ना, गाय से गाय का बछड़ा, सिंह से सिंह का शावक, कुत्ता से कुत्ता का शावक, ये प्रकृति का नियम है। परंतु जो भगवान है इस प्रकृति के नियम से अतीत है, ये प्रकृति का कोई भी कानून कायदा उनको बांध नहीं सकता है। ये तो पाषाण से भी उत्पन्न हो जाते हैं, वाराह से भी वाराह अवतार हुआ है, ग्रीवा अवतार हुआ। तो भगवान प्रकृति से परे होने के कारण से प्रकृति व्यश्च परम यच्च तद अचिंत्य लक्षणम, जो प्रकृति के गुण धर्म से अतीत है वही अचिंत्य परमात्मा है, जो हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं, वह तो केवल श्रद्धा विश्वास का विषय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण सृजन के पहले श्रद्धा विश्वास का वर्णन करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थीश्वरम्। ये श्रद्धा विश्वास साक्षात भगवान शंकर और पार्वती का रूप है, जिसके बिना हम भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो भी समझ नहीं सकते। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण है, इधर जो है अर्जुन के सामने भी है, उसी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी भगवान के विराट रूप को देख के नमस्कार कर रहे, वंदना कर रहे। वहीं पर दुर्योधन दुशासन रस्सी लेके बांधने का प्रयास कर रहे, जो सारे जीवों को बंधन मुक्त करता है, उन्हें बंधन में डालने के लिए प्रयासरत है। तो भगवान आ भी जाए, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, शास्त्रों का संस्कार नहीं, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे दुर्योधन अंतिम समय तक भगवान को एक चमत्कारिक पुरुष मानता रहा कि ये मायावी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, तो उसकी दशा क्या हुई सबको विदित है। इसलिए हमें श्रद्धा विश्वास के द्वारा भगवान के स्वरूप को स्वीकारना चाहिए। उपनिषद में कहा है कि वह जब तत्व मन वाणी का विषय है ही नहीं तो उसको कैसे समझा जाए। तो कठोपनिषद में कहा अस्ति ते उपलब्धव्य तत्व भावी न चोभयो। यमाचार नचिकेता को बोलते हैं अस्ति मतलब आत्मा है, इस प्रकार से आत्मा के सत्ता को स्वीकारने से वही उपलब्ध होता है। जैसे कि डॉक्टर कोई दवाई दिया, आपको पता नहीं कि दवाई कहां निर्मित हुई, किसने बनाया, कैसे बनाया, पर आप भरोसा करके दवाई खाते हैं। यदि आप संशय करें क्या पता ये पॉइजन है कि दवाई, किसने देखा, किसने जाना, तो संशय करते रहो, तो संशयात्मा विनश्यति। हमें श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उस सत्ता को स्वीकारना चाहिए। स्वीकारने के बाद उसकी स्वयं अनुभूति होती है। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।